जो प्रियंका ने सीधे सीधे आस्था के किरदार पर उंगली उठाई, नानी माँ उसे घूरने लगी। आगे भले ही अबीर सिंह राठौड़ कह रहा हो कि आस्था उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई थी, लेकिन आस्था कभी कोई गलती नहीं कर सकती थी। नानी माँ इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तभी आहान प्रियंका को घूर कर बोला, जबान संभाल कर बात कीजिए। प्रियंका जी, आप हमारी भाभी के बारे में बात कर रही हैं और हमारी भाभी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती है। आहान के ये कहने पर रौनक को वाकई अच्छा लगा। उस वक्त प्रियंका की माँ सीमा चुप नहीं रह पाई, फूंस लेते हुए बोली, माफ़ करना बेटा जी, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन एक छोटे शहरों की मामूली गवाड़ लड़कियाँ जो होती हैं ना, ये पैसों की चमक धमक में सब कुछ खो बैठती हैं, और इसीलिए जब जमाई जी ने शुरू शुरू में उसे प्यार नहीं किया तो वो प्यार ढूंढने के लिए अबीर सिंह राठौड़ के पास चली गई होगी। लेकिन खैर, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा बुझाकर उससे माफ़ी मंगवा लूँगी। सीमा के ये कहने पर नानी माँ का दिल किया कि उठें और एक चांटा सीमा के मुंह पर मार दें, लेकिन इस वक्त नानी माँ खामोश थी, क्योंकि वो खुद इस बात के बारे में जानना चाहती थी कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि आस्था को खुद अबीर सिंह राठौड़ से मिलने जाना पड़ा। वहीं रौनक कश्मकश का शिकार थी, क्या वो इन लोगों के सामने सारा सच बता दे, क्योंकि आस्था अकेले वहां नहीं गई थी, लेकिन वो सब उसकी बातों पर यकीन क्यों करेंगे। लेकिन जिस तरह से वे सब आस्था को गलत समझ रहे थे वो भी तो सही नहीं था। इसीलिए रौनक रश्मि के पास आकर बोली, रश्मि दीदी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन रश्मि, जिसके ढेर सारे सपने थे, उसका पूरा का पूरा हल्दी का फंक्शन पूरी तरह से खराब हो चुका था, और साथ ही साथ आस्था पर इस तरह का इल्ज़ाम उसे और भी ज्यादा तोड़ गया था। रश्मि खुद डरी हुई थी, अबीर वही इंसान था जिसने उनके सामने एक आदमी को गोली मारी थी। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि आस्था उससे मिलने क्यों गई थी, तो इसीलिए वो किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। जब रौनक ने रश्मि से बात करने की कोशिश की, तब आहान ने रश्मि के साथ रौनक को खुसर-फुसर करते हुए देख लिया था, और वो घूर कर रौनक को देखकर बोला, मुझे लगता है कि यहाँ फालतू लोगों का कोई काम नहीं होना चाहिए, तो जितने भी एक्स्ट्रा लोग हैं वे सभी अपने कमरे में यहाँ से चले जाएं, या सीधा सिंघानिया मेंशन से बाहर निकल जाएं। आहान ने जैसे ही नफरत से रौनक की ओर देखकर ये बोला, रौनक को तो ऐसा लगा कि किसी ने उसे कुएं में धक्का दे दिया हो, क्योंकि अपनी इतनी बेइज्जती वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और आहान की बात सुनकर प्रियंका के भी खून में आग लग गई थी, लेकिन फिलहाल वो इस मेंशन से बाहर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो जल्दी ही अपने कमरे में चली गई थी। उसके पीछे पीछे उसके माँ बाप भी चले गए थे। अब आहान रौनक को तब तक घूरता रहा जब तक कि रौनक अपने कमरे में नहीं चली गई थी। हालांकि रौनक वहां रुककर सच बताना चाहती थी, लेकिन किसी वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो किसी से कुछ बोल ही नहीं पाती थी, और वो भी सीधा अपने कमरे में चली गई थी। और वहीं रश्मि की आंखों में इस वक्त आंसू बह निकले थे। तब दादाजी ने मारिया को ऑर्डर दिया था कि वो सब बच्चों को लेकर कमरे में चले जाएं, और राधिका, रश्मि, मारिया, वो भी सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। अब हॉल में केवल नानी माँ और सारे जेंट्स मौजूद थे, यानी ध्रुव, आकाश, सुमित, आहान और दादाजी देव टाइगर हॉल में मौजूद थे। बाकी सब लेडीज अब अपने कमरे में चली गई थी, सिर्फ नानी माँ को छोड़कर। तब नानी माँ मौका देखकर दादाजी से बोली, जरूर कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है भाई साहब, हमारी आस्था ऐसी नहीं है, वो इस तरह से भला अबीर सिंह राठौड़ से मिलने क्यों जाएगी, जरूर कुछ ना कुछ बात है, प्लीज आप मेरी आस्था पर भरोसा बनाए रखना। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, दादाजी एक हल्की मुस्कान से बोले, बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम आस्था बेटी को अच्छी तरह से जानते हैं, आपको हमें उसके लिए कोई भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज अभी फिलहाल तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त अरमान कैसा है, क्योंकि अरमान को इस वक्त संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कहीं ना कहीं दादाजी कहीं खो गए थे। दादाजी को भी इस बात का डर सता रहा था कि कहीं अरमान इस बात को अपनी ईगो पर ना ले ले, और जिस तरह से अभिमान और इसकी माँ वसुंधरा का रिश्ता खत्म हुआ था, कहीं इस तरह से आस्था अरमान का रिश्ता ना खत्म हो जाए, क्योंकि अरमान कितना ज्यादा सेंसिटिव था और उसने अपने बचपन से क्या कुछ सहा था। ये बात दादाजी अच्छी तरह से जानते थे, इनफैक्ट अरमान के दर्द के एक एक पल के वे गवाह थे, एक पल के वे साक्षी थे। वहीं दूसरी ओर आस्था अब बुरी तरह से हड़बड़ी में हर एक कमरे में दौड़ दौड़कर अरमान को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अरमान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इन द लास्ट, जैसे ही वो जिम वाले रूम की तरफ गई, वहां भी उसे अरमान दिखाई नहीं दिया, लेकिन जिम के अंदर एक अजीब सी आवाजें आ रही थी। आस्था को नहीं पता था कि ये आवाज कहां से आ रही है। उसने जिम का कोना कोना छान मारती है, लेकिन उसे कमरे में कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज वहीं से आ रही थी। आस्था इस बात के लिए 100% श्योर थी, और जैसे उसने जिम वाले रूम के फ्लोर पर अपने कान रखकर आवाजें सुनने की कोशिश की, तो उसे इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया था कि आवाज कहां से आ रही है, और वो फटाफट से तहखाने में जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, और उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बड़ी सी फोटो पर उसकी नजर आ गई थी, और जैसे उसने उसे फोटो को छुआ, तुरंत ही एक सीढ़ियां नजर आने लगती हैं। और आस्था फटाफट से दौड़कर उन सीढ़ियों पर पागलों की तरह दौड़कर नीचे गई थी। हालांकि आस्था ने वो सीढ़ियां पहली बार देखी थी, लेकिन वो जल्द से जल्द अरमान तक पहुंच जाना चाहती थी। कहीं ना कहीं उसके सिक्स सेंस यही कह रही थी कि अरमान सिंघानिया इस वक्त अकेला है और इस वक्त उसे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि आस्था के पेट में कमर में खुद दर्द हो रहा था, लेकिन फिलहाल वो अरमान से मिलना चाहती थी और उसे सारा सच बताना चाहती थी। आस्था जैसे ही दौड़ती भागती बदहवास हालत में सीढ़ियों से नीचे गई तो उसकी सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे हो गई थी। उसकी आंखों ने ऐसा कुछ देख लिया था जिसे देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए। उसने देखा कि अरमान सिंघानिया ऊपर से बिल्कुल नेकेड था और उसने एक बड़ा ही बड़ा सा हंटर अपने हाथ में लिया हुआ था और अपनी खुली नंगी पीठ पर मार रहा था, जिससे अरमान के चेहरे पर, अरमान के पूरे शरीर पर कितने ही सारे निशान बन चुके थे और वहां से खून निकलना शुरू हो रहा था। आस्था ने जैसे ही अरमान की हालत देखी उसका दिल पूरी तरह से दहल गया था और जल्दी से दौड़कर वो अरमान को रोकते हुए बोली, नहीं अरमान जी नहीं, बोलकर जाकर उसने अरमान को पीछे से कसकर गले से लगा लिया था। वही अरमान जो कि हंटर अपनी पीठ पर बरसा रहा था, जैसे उसे इस बात का एहसास हुआ कि आस्था उसे गले से लगा लिया है, तब उसकी पकड़ उस हंटर पर कस गई थी। लेकिन वो थोड़े कोल्ड वॉइस में बोला, आस्था हमसे दूर हो जाइए, हमने आपको तकलीफ दी है, मुझे खुद को सजा देने दीजिए। अब तो आस्था और ज्यादा तड़प गई थी और उसकी पीठ से हटकर वो सीधा उसके सीने से जा लगी थी और अरमान की ओर देखकर बोली, नहीं प्लीज 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 अपने आप को तकलीफ मत दीजिए अरमान जी, प्लीज अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, हम आपको इस तरह की तकलीफ में नहीं देख सकते। अरमान जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं नहीं प्लीज प्लीज आप एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, आप गलत समझ रहे हैं, हमारा अबीर से कोई लेना देना नहीं है। तो अचानक से अरमान अपने इंडेक्स फिंगर को अपने होठों पर रखकर, आस्था की आवाज मुंह से नहीं निकली,
प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें कोई सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं यहां सिर्फ खुद को ये तकलीफ देना चाहता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें तकलीफ दी है। ऐसा बोलकर अरमान ने अपना सर अचानक आस्था के कंधे पर रख दिया और कब उसकी आंखें बंद हो गईं उसे एहसास ही नहीं रहा, क्योंकि अरमान ने लगातार खुद को कितनी ही ज्यादा तकलीफ दी थी और अब अरमान के इस तरह से बेहोश होने पर आस्था के हाथ पैर फूल गए थे और वो जोरों से चिल्ला पड़ी थी, अरमान जी प्लीज उठिए, अरमान जी प्लीज उठिए। आस्था की चीखने की आवाजें जल्दी ही पूरे मेंशन में गूंज रही थीं। मारिया, टाइगर, साथ ही साथ सुमित, आकाश, ध्रुव, आहान सभी दौड़ पर अब जिम रूम में पहुंचते हैं और तहखाने के बारे में उन सभी को अच्छी तरह से पता था और सभी जल्दी पलक झपकते ही वहां मौजूद थे। आस्था अरमान को गले से लगाए हुए बड़ी बुरी तरह से चिल्लाते हुए रो रही थी। जल्दी उन्होंने आस्था को शांत रहने के लिए कहा था और अरमान को लेकर सीधा मिनी हॉस्पिटल में आ गए। डॉक्टर की टीम पहले से ही वहां मौजूद थे और जल्दी ही अरमान का इलाज किया जाने लगा था और आस्था का रो रोकर बहुत बुरा हाल था। सभी घर की लेडीज भी मिनी हॉस्पिटल के बाहर जमा हो गई थीं। आस्था की नानी माँ उसे शांत होने के लिए कह रही थीं और बोल रही थी कि कुछ नहीं होगा तेरे पति को, तो शांत हो जा मेरे बच्चे। लेकिन आस्था जितना अरमान के बारे में सोचती उतना और ज्यादा रोने लगती है। तभी प्रियंका खुद को रोक नहीं पाती है और तेवर चढ़ाते हुए बोली, अब रोने से क्या फायदा, तुम्हें इस बात का एहसास तो तब होना चाहिए था, तुम्हें इस तरह से अरमान सिंघानिया को धोखा नहीं देना चाहिए था, आस्था तूने बहुत बड़ी गलती की है। आस्था उस वक्त किसी को कोई जवाब या सवाल, किसी की फिजूल बातें सुनने या देने के मूड में नहीं थी, क्योंकि उस वक्त उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अपने पति को ऐसे देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका था। तभी नानी माँ प्रियंका को घूरते हुए बोली, अपनी हद में रहे प्रियंका, और अगर किसी के दुख में साथ नहीं दे सकती है तो चुपचाप करके खड़ी रहो या फिर चली जाए यहां से। ऐसा बोलकर नानी माँ प्रियंका को डांटने लगती थी। तब सीमा बीच में आई और रूखी आवाज में बोली, माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन इस तरह से मेरी बेटी की जुबान बंद करने से भला क्या होगा, सब लोग तो ऐसी बात बोलेंगे ना कि आपकी प्यारी नातिन ने किस तरह से अपने पति को धोखा दिया है, क्या इसको शोभा देता है इतने बड़े घर की बहू होने के बाद अपने पति को धोखा देना, आप इस तरह से मेरी प्रियंका को डांट डांट कर उसकी आवाज को खामोश नहीं कर सकती हैं। वहीं अब सीमा ने जैसे ही जली कटी बातें की, सब घूर कर दोनों माँ बेटी को देख रहे थे कि किस तरह से दोनों माँ बेटी आग में घी डालने का काम कर रही थी। लेकिन अरमान सिंघानिया जो कि उस वक्त बेहोश था, उसके कानों में भी उन दोनों माँ बेटी की आवाजें जा रही थीं और बेहोशी की हालत में भी उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद करके रखा हुआ था। और तब डॉक्टर जल्दी से बाहर आ गए और वार्निंग देते हुए बोले, प्लीज कृपया करके शांत हो जाइए। आप लोगों के इस तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अंदर बॉस यानी पेशेंट को डिस्टर्ब कर रही हैं। प्लीज़ बिल्कुल भी कुछ भी मत बोलिए, अगर ऐसा हुआ तो सर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, दादाजी ने तुरंत प्रियंका और सीमा से वहाँ से चले जाने के लिए कहा। तब सीमा आखिरी बार एक बात और बोलती है कि सच बोलने का तो आजकल ज़माना ही नहीं है, कहते हुए जल्दी ही अपनी बेटी का हाथ कर वहाँ से दूसरे कमरे में चली गई थी। वहीं रौनक अभी अपने कमरे में थी, वो इधर उधर टहल रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों को क्या जवाब दे, क्योंकि आहान ने उसे सबके सामने पराया कहा था और उसे उसके कमरे में जाने के लिए कह दिया था। लेकिन अब आस्था की जो सिचुएशन थी, जो हालत थी, तो उसे जल्द से जल्द ये सारी बातें दादाजी को बतानी थी, ताकि कोई आस्था को गलत ना समझे। लेकिन फिलहाल तो सभी अरमान के इस तरह से बेहोश होने पर, बीमार होने पर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो अब जल्दी से रौनक भी अब अरमान के होश में आने का इंतज़ार करने लगी थी। रौनक ने डिसाइड किया था कि वो सारा सच अरमान को बताएगी, ताकि अरमान और आस्था के बीच में किसी तरह की कोई गलतफहमी ना हो। वो तकरीबन 2 घंटे तक सभी लोग एक साथ मिनी हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े रहे, और वो दोनों माँ बेटी, प्रियंका और उसकी माँ, आराम से कमरे में बैठकर राजेश से मंगवा मंगवा कर अच्छे अच्छे पकवान और नाश्ते कर रही थी। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। बीच बीच में वो झांक कर बाहर की ओर देख लेती थी कि अरमान को होश आया नहीं आया है। उसके बाद फिर से अपने खाने पीने में बिजी हो जाते। मनोज जी ऑलरेडी वहां से चले गए थे, लेकिन वो दोनों माँ बेटी शादी के नाम पर वहीं डेरा जमा कर बैठ चुकी थी। तकरीबन कितनी देर के बाद अरमान को होश आया, और जब उसे होश आया उसने देखा कि उसका हाथ इस वक्त आस्था की गिरफ्त में था। अरमान कितनी देर तक आस्था के खूबसूरत प्यार भरे चेहरे को देखता रहा, और फिर उसके बाद उसकी नजरें बाकी सब पर गईं। सभी अरमान को देख रहे थे, सभी की आंखों में अरमान के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी।